Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश प्रायेश भद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। श्रीमद्भागवतम कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। ते तू ब्राह्मणदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नदियः तस्मै प्रत्यर्पय इदं भवारिदे। ते तु ब्राह्मणदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नदियस्तस्मै प्रीता क्लिन्नदियस्तस्मै प्रत्यप्येन्दं भवारिषे प्रत्यप्येन्द्रं भवारिषे। ते तु ब्राह्मणदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं प्रीताः क्लिन्नदियस्तस्य प्रीता क्लिन्नदियस्तस्मै प्रत्यर्प्येन्द्रं बभारिषे। हेतु ब्राह्मणदेवस्य वात्सल्यं वीक्ष्य संस्तुतं तस्मै
ब्राह्मणदेवस्य
ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यमेक्ष संस्तुतम्। तस्मै हेतु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यं संस्तुतम्। हेतु ब्राह्मण देवस्य यम दीक्ष संस्तुतम्। ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यमेक्ष संस्तुतम्। तस्मै सत्यर्थैतम् समाप्यते। ते वे होता ब्रह्मादि तु लेकिन ब्राह्मण देवस्य ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान रामचंद्र का वात्सल्यम पितृतुल्य स्नेह वीक्षा देखकर संस्तुतम स्तुति की प्रीता प्रसन्न होकर खिन्नदिया गदगद होकर तस्मै उनको रामचंद्र जी को प्रत्यर्प्य लौटाते हुए इदम यह प्राप्त हुई सारी भूमि बभारिषे बोले। अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन रहे थे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यज्ञ कार्य में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वात्सल्य एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि प्राप्त दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती थी। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के भांति कर्म करते थे और क्षत्रिय क्षत्रियों की तरह। अतएव जब भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे डाला तो योग्य तथा चतुर ब्राह्मण ने विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करने के उसे लाभ कमाने के लिए नहीं है। भगवद गीता में कहा गया है, समोदमत तपस्वचम शांतिर्यार्जम एवच ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांत स्वभाव, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान तथा विज्ञान, धर्म, धार्मिकता, ये गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने तथा प्रजा पर शासन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो क्षत्रियों के कर्म हैं। अतएव भले ही ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार ना किया हो, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने लौटा दिया। ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य से इतना प्रसन्न था कि उसके हृदय द्रवीभूत हो उठा। उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था। क्षत्रिय का एक गुण है दानशीलता। क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करता, अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए करता है। दानम ईश्वर भावस्य। एक ओर क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर दान देते थे, वे दान वितरण करने के लिए कर्ण को सौंपते थे। कर्ण दाता कर्ण के रूप में विख्यात थे। दाता शब्द अत्यंत उदार भाव से दान देने वाले का सूचक है। राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता था तो अन्न का दान देते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि दान ले, किंतु शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में नहीं। अतएव जब भगवान ने ब्राह्मणों की इतनी अधिक भूमि दान में दे दी तो उन्होंने लौट दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। ओम अज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्मैष्टवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिताश्च विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राघव कान्त नमोऽस्तु। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में रामायण की चर्चा हो रही है, भगवान रामचंद्र का चरित्र। तो आज का श्लोक का तात्पर्य है, लेकिन पिछले दो श्लोकों का तात्पर्य नहीं है। उसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान रामचंद्र ने सारे पूर्व दिशा को, यानी ये जो दूसरा श्लोक का अनुवाद है, भगवान रामचंद्र ने सारे पूर्वी दिशा को होटा नामक ब्राह्मणों को अर्पण कर दिया, दक्षिण दिशा को ब्रह्म नामक ब्राह्मणों को अर्पण किया, और पूरी पश्चिमी दिशा को अध्वायुर नामक ब्राह्मणों को अर्पण किया, उत्तरी दिशा को उद्घात नामक ब्राह्मणों को अर्पण किया। कोई भी यज्ञ संपन्न होता है उनके अंदर चार प्रकार के ब्राह्मणों की आवश्यकता होता है, वो है होता, ब्रह्म, उद्घात और अध्वायुर। होता, ब्रह्म, अध्वायुर, उद्घात, ये चार प्रकार के ब्राह्मण के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला ये जानना चाहिए कि उद्घात ब्राह्मण होते हैं वो सामवेद को उच्चारण करने बड़े पटु होते हैं, तो इसलिए उनको उद्घात कहा जाता है, जो गा सकते हैं, इतना सुंदर गा सकते हैं सामवेद मंत्रों को। उनका केवल एक ही कर्तव्य है मंत्रों को उच्चारण करना। जो ब्रह्म होते हैं उनका कार्य होता है कि बराबर सारे यज्ञ की विधि चल रहा है कि नहीं निरीक्षण करना। तो इसलिए ये जो ब्रह्म ब्राह्मण होते हैं वो ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, बराबर समय पे आहुति हो रहा है कि नहीं, बराबर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, कौन से टाइम में कौन सी चीज की प्रतिष्ठा हो रहा है कि नहीं, ये सब का निरीक्षण करने वाले ब्रह्म ब्राह्मण होते हैं। और जो होटा ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है जो स्वाहा वो करने वाले, यानी यज्ञ कुंड में जो आहुति अर्पण करने वाले जो है वो स्वाहा। और अध्वायुर ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ की जो एरिया है या उसके मंडल है उसको बनाना, यज्ञ कुंड बनाना, कलश स्थापना करना, ये जितने भी अन्य विधियां होता है इन विधियों को करने वाले हैं। तो ये चार प्रकार के ब्राह्मण हमेशा अनेकों कालों से ये यज्ञ के कार्य कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, ने सोचा कि ब्राह्मण इतने शुद्ध है तो मैं उनको पूरा अपना सब कुछ अर्पण करना चाहता हूं। भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या में आके राजा बनने के बाद सारी उनकी भूमि यानी सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को उन्होंने बांट दिया। तो जैसे ब्राह्मणों को बांट दिया, देयर आफ्टर ये तीसरा श्लोक अनुवाद है, भगवान रामचंद्र तुमने सोचा कि अस्तित्व में ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं होता है, वो बड़े दीन होते हैं और उनके पास दूसरा गुण ये है कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान रामचंद्र ने सोचा कि ये जो संपत्ति जो है उस व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिनके पास कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जैसे संपत्ति उस व्यक्ति के हाथ में आता है जिनके पास बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, वो निश्चित रूप में उस संपत्ति को गलत प्रयोग करेगा, उनको शोषण करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए रामचंद्र ने सोचा इन ब्राह्मणों के पास तो कुछ है ही नहीं, और साथ साथ में अगर मान लो उनके पूरा साम्राज्य मिल जाए, वो इतने अनासक्त हैं इन चीजों से, वो ये पूरा साम्राज्य को बराबर वो संभाल लेंगे क्योंकि वो अनासक्त है। इसलिए अनासक्त व्यक्ति को ही संपत्ति या पदवी दिया जाता था। आसक्त व्यक्ति को अगर संपत्ति या पदवी दिया जाए तो निश्चित रूप में उसको शोषण करेगा। जैसे अभी आज इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में किन लोगों को चुना जा रहा है, जो अत्यंत आसक्त है, मुझे पदवी चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसके ऊपर मैं राजा बनूं, मैं नियंत्रण करूं, वैसी जिसके अंदर इस प्रकार की इच्छा है, जिनकी शुद्ध विचार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह है, और उनके हाथ में अगर पदवी दिया जाए, कुछ भी कहेंगे आप, वो पदवी को निश्चित रूप में शोषण करेगा। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किया, ब्राह्मणों के हाथ में ये पूरा संपत्ति दे दिया। तो लेकिन ये आजकल की जो प्रजातंत्रवाद है वो बहिरंगिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, प्रजा अपने नेता को चुन सकती है, लेकिन इस समाज में अधिकांश लोग बुद्धिमान नहीं होते, अधिकांश मूर्ख होते हैं। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति का वोट और एक मूर्ख व्यक्ति का वोट, वो दोनों को समतुल्य देखना, ये मूर्खता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, एक बच्चा जो फर्स्ट नंबर लाता है और एक बच्चा जो है हमेशा फेल होता है, उन दोनों का विचारधारा एक नहीं होता है, उन दोनों में विचारधाराओं में बहुत अंतर होता है, उन दोनों का मत में बहुत अंतर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे चाणक्य जैसे महान विद्वान ब्राह्मण का मत और एक शराबी और जिनका कोई चरित्र नहीं है उनका मत में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन प्रजातंत्र में क्या हुआ है, क्या करते हैं, इन दोनों मतों को एक बराबर तुलना किया गया है। एक चाणक्य जैसा महान विद्वान का वोट भी एक ही है, एक ही गिना जाता है, और एक नशा करने वाला, वो स्त्रियों को छेड़खानी करने वाला, उनका मत भी एक ही बराबर माना जाता है। तो प्रजातंत्र में कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है, क्योंकि मूर्ख लोग किसको चुनेंगे नेता के रूप में, मूर्ख को ही चुनेंगे। भगवान रामचंद्र वो भगवान स्वयं है, एक योग्य क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा संपत्ति को ब्राह्मण को दे दिया। तो ये कार्य के द्वारा दो चीजें उन्होंने भगवान ने सिद्ध किया, दूसरा एक क्षत्रिय को भी अपना जो पदवी है उससे अनासक्त होना चाहिए, दूसरा उनको ये शिक्षा दिया सारा जगत को कि हमको उसी व्यक्ति को पदवी देना चाहिए, संपत्ति देना चाहिए, राज्य देना चाहिए जो अनासक्त रहता है। अनासक्त जो हुए बिना, जो भी अनासक्ति के बिना जो वस्तुओं को हम रखेंगे उन वस्तुओं का निश्चित रूप में शोषण होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हो उपयुञ्जतः, अनासक्तस्य विषयान यथार्हो उपयुञ्जतः। अनासक्तस्य विषयान, जो व्यक्ति विषयों से अनासक्त है वही व्यक्ति हर वस्तु को यथार्हो यथा उचित उपयोग कर सकता है, नहीं तो निश्चित रूप में दुरुपयोग करेगा। इस जगत में दुरुपयोग अनेकों चीजों का हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को अभी भौतिक आसक्ति नहीं गया है, ये भौतिक आसक्ति की वजह से दुरुपयोग हो रहा है। मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का ज्ञान लीजिए या मेडिकल का ज्ञान लीजिए या कोई भी चीज का ज्ञान लीजिए, उन सब ज्ञान अनेकों अनेकों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आतंकवादी भी उसको यूज करते हैं, आतंकवादी भी बड़े बड़े इंजीनियर आतंकवादी भी हैं। इसका अर्थ क्या है, बड़े ही हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर हो गया है, हमारा बच्चा डॉक्टर हो गया है, लेकिन जब तक उनको नैतिकता अनासक्ति का शिक्षा नहीं देंगे उसको शिक्षित नहीं माना जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो अपना प्राप्त किया हुआ जो शिक्षा है, तथाकथित शिक्षा है, उसको निश्चित रूप में दुरुपयोग करेगा। इसलिए शुरुआत में बचपन से ही अनासक्ति का जो ट्रेनिंग है, उनका जो शिक्षा है, वो देना अत्यंत आवश्यक है। अनासक्ति का शिक्षा के बिना समाज में लोग उत्पात बचाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ये अच्छे लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी। इससे रामचंद्र ने क्या किया, ब्राह्मणों को जो अत्यंत अनासक्त थे उनको सारा राज दे दिया। आफ्टर गिविंग एवरीथिंग इन चैरिटी टू द ब्राह्मणस, भगवान रामचंद्र ने सब कुछ अपने ब्राह्मणों को सब दान दे दिए, तो क्या किया भगवान रामचंद्र ने, क्या किया अपने धारण किए वस्त्रों को छोड़ के, आभूषणों को छोड़ के सब कुछ दान में दे दिया। उनका राज महल वेल सब कुछ दान दिया, खाली उनके वस्त्र पहने थे वही वो धारण किए थे। लेकिन उनकी अर्धांगिनी सीता देवी, उन्होंने क्या किया, सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया, अपने धारण किए गए आभूषण भी दान में दे दिया, केवल उनका नतनी मात्र था, बस सीता देवी नतनी धारण की थी, उनके गले में जितने भी अमूल्य गहने हैं सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया। तो आजकल हम देखते हैं अगर पति थोड़ा सा दान देना चाहता है तो पत्नी उनको रोक देती है, क्या जरूरत है देने की, हाँ हमारा क्या होगा। लेकिन उस प्रकार की जो पत्नियां होती हैं जो पति को धर्म कार्य में सहयोग देने के लिए मना करती हैं, उस प्रकार की जो पत्नी है वो पतिव्रता नहीं है, वो धर्म को रक्षा करने वाले नहीं है, वो खुद भी नरक जाने वाले हैं और साथ साथ में अपने पति को भी नरक देने के जाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा हमको अनुभव होता है या देखा गया है कि एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक व्यक्ति ऐसे सब्जी मार्केट था उसके बाजू में टेबल लगाए थे, भगवद गीता बांट रहे थे, तो एक व्यक्ति आके भगवद गीता लेके पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उससे कितना है बोला तो मैं तुरंत बोला कि वो निकाल के दे रहा था। उसी समय पता नहीं उनकी गुस्से से कोई स्त्री आई, मैं सोचा उनको पत्नी ही, उनका हाथ पकड़ा, भगवद गीता छीन के रख दिया, ताकि बोला चलो अब कोई तुम्हारे पास काम नहीं किया तुम्हारे पास, ढांड के उनको लेके गए। तो बोला क्या है भाई वो बेचारा आगे आगे जा रहा है और मुझे देखते देखते जा रहा है लेकिन इधर सीता देवी जो है भगवान रामचंद्र की पत्नी लांगी उनकी बारिया, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा रामचंद्र ने कम से कम अपने आभूषणों को रखा अपने पास, लेकिन मैं तो अपने पूरे आभूषणों को भी दे दूंगी, केवल नतनी को सीता जी ने रखा। तभी आज का श्लोक में देखते हैं, अभी भगवान रामचंद्र ने सारे ब्राह्मणों को अपना संपत्ति सारा राज्य दान देने के बाद ब्राह्मणों ने कैसा उसके साथ व्यवहार किया, क्या सोचा ब्राह्मणों ने, तो उसका वर्णन इधर हुआ है। ते का अर्थ है वो ब्राह्मण, यानी कौन ब्राह्मण, कि जो चारों प्रकार के ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा होता उद्घाटा अध्वायुर, ये जो चारों प्रकार के ब्राह्मण ते तु ब्राह्मण देवस्य अर्थ क्या है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र कौन है, ब्राह्मण देवस्य, भगवान रामचंद्र को ब्राह्मण देवस्य करके संबोधित किया गया। क्यों संबोधित किया गया है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के देव है। आप सब लोग इस श्लोक को जानते हो, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक में कहा गया है कि नमो ब्राह्मण्य देवाय, भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र हैं ब्राह्मणों के देव हैं, वैसे वो सबके देव हैं लेकिन खास करके ब्राह्मणों के देव हैं, ब्राह्मणों के प्रति उनका विशेष लगाव है। उसके पीछे रहस्य ये है, उसके पीछे कारण ये है, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो भगवान के बारे में ज्ञान जानते हैं या भगवान के तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। तो इधर थोड़ा सा ब्राह्मण शब्द का असली जो व्याख्या है वो सुनेंगे। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या शास्त्रों में अनेकों जगह इसके बारे में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मणों की व्याख्या कहा गया है, यो विजित्वास्त्वान्नाल प्रयेति स ब्राह्मणः, जो इस संसार के जो दुखों को जानता है और उस दुखों को निवारण करने की जो क्रिया है उसको जानता है वो ब्राह्मण है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि संसार में दुख और बढ़ते जा रहे हैं और वास्तविक दुख क्या है वो कोई जानता नहीं है, और वास्तविक दुख जानने पर भी उसका वास्तविक इलाज क्या है वो नहीं जानते। इसका अर्थ क्या है, इस संसार में कोई ब्राह्मण नहीं रहा, भले ही ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म लिया हो फिर भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाते, खाली जन्म मात्र जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जैसे कोई डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर नहीं बनता, जब तक उसको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं होता तब तक उसको डॉक्टर नहीं कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर परिवार में कोई बच्चा जन्म लिया, क्या सब उसको डॉक्टर बोलेंगे, उस बच्चे को भी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं है। वैसे ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं होता है, उसको इतना कह सकते कि द्विज बंधु, ब्राह्मण के बंधु कह सकते हैं, लेकिन उनको ब्राह्मण करके संबोधित नहीं कर सकते। तो ये एक डेफिनेशन हुआ ब्राह्मण का। और एक परिभाषा भगवद गीता में भगवान देते हैं, समोदम तपस्सोचम शांतिरार्धमेव च, शांतिरार्धमेव च आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समह समह का अर्थ है वो शांत रहता है, लेकिन आजकल हम देखते हैं सबसे गुस्से वाले ब्राह्मण होते हैं। हाँ, तो बिना कारण गुस्सा करते हैं। तो समह मतलब शांत रहता है। दमह, दमह का अर्थ क्या, आपकी इंद्रियों को दमन करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण जो है अभी मांस इत्यादि खाना शुरू कर दिए हैं, और मांस खाते हैं और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अनेकों अनेकों जगह अभी लहसुन प्याज भी खाते हैं, बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। और शराब भी पीते हैं, बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जो अपनी इंद्रियों को दमन नहीं किया है, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। तपह, जो तपस्या करता है वो ब्राह्मण है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग बहुत भोग करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा खिलाना चाहिए, हमको वो पका के दो, ये पका के दो। हाँ, इस प्रकार जो ऑर्डर करते हैं, हमको वही खाना है, तो ये तपस्या जो आप लोगों के लिए, हमको तो भोग करना है। लेकिन भगवान स्पष्ट रूप में कहेगा समो दमत तपह, जिसके अंदर तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। खाली 50 पैसे का जो रस्सी है या धागा है वो बांधने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। तो भगवान निश्चित रूप में ब्राह्मण देवस्य, ये बात सही है, लेकिन वो ब्राह्मण देव हैं, जो ब्राह्मणों के देव है जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, शौचम, जो एकदम बिल्कुल साफ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि आप प्राय अनेकों गांव वहीं इधर उधर मंदिरों में जाइए, वो ब्राह्मण जो है वो महागंधा रहता है। उनका जनेऊ देखेंगे एकदम बिल्कुल काला रहता है, और वो जहां पूजा करता है उधर पता नहीं कितने महीनों से कचरा पड़ा हुआ है, फूल पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। उनको भगवान की जगह को भी गंदा रहता है, वो खुद भी गंदा रहता है। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आजकल के ब्राह्मण जो इतना के ब्राह्मण, वो खुद तो 10 बार नहाते हैं लेकिन आजू बाजू सब गंदा रखते हैं। आजू बाजू सब गंदा रखे हैं, खुद रखते हैं। तो थमोदम तपस्सोचम शांति, तो शांति का अर्थ है जो बहुत सहनशील है, जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। और बाद में आर्जवम, जो बहुत सरल जीवन यापन करता है, हमेशा ये चिंता करना मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ज्यादा धन चाहिए, उस प्रकार होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, इस प्रकार विचार करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, तो एक जगह किसी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उनके मुंह में इतना सारा पान था वो ब्राह्मण करके बोल भी नहीं पा रहा था बराबर। तो ज्ञान विज्ञान की बात छोड़िए, उनका अगर बोलूंगा तो श्लोक बोलिए, तो कोई श्लोक बोलने से पहले उसके मुंह से बहुत सारा पान का थूक बाहर आएगा। अगर वो जाके पूजा करने लग जाए तो भगवान को क्या मिल रहा है, उनका झूठा मिल रहा है। ये सत्य बात है, ऐसा सही देखने को होता है। तो ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, ना ज्ञान है ना विज्ञान है, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, आस्तिक्यम यानी शास्त्र के अनुसार अपना धार्मिक विचार रखते हैं और कार्य करते हैं, शास्त्र के अनुसार पूरा अपना कार्यवाही करते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। वैसे जन्मतः ब्राह्मण को प्रभुपाद जी ने पूर्ण तरीके से खंडन किया, जो जन्मतः अपने आप को ब्राह्मण कहता है वो मूर्ख है, असलियत में वो ब्राह्मण नहीं है। गुणों के द्वारा, इसके भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण और आश्रम को मैंने सृष्टि किया है। कैसे सृष्टि किया, चातुर्वर्ण्यम मय सिस्टम, गुण कर्म विभाग सर, गुण और कर्म के अनुसार ये 4 वर्णों को विभाजन किया गया है। तो पहला तो गुण होना चाहिए, गुण होना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ में कर्म भी उसी प्रकार होना चाहिए। अभी कोई बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं, क्या करता है, वॉचमैन का काम कर रहा है। वाचन का काम कर रहा है और रोज बीड़ी पी रहा है, बोलते हम ब्राह्मण है, बड़ा शिका भी रहता है। एक बार हम एक ऑटो में बैठे थे, ऑटो ड्राइविंग कर रहा था, मैं पीछे बैठा, पीछे देख के बोलता है महाराज आप जानते हो हम कौन है? तो मैंने बोला कि अभी तो आप ऑटो ड्राइवर हो। नहीं नहीं हम ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो वो चार पांच चौपाई सुनाया, पूरा आधा घंटा प्रवचन सुनाया, प्रवचन सुना के मैं उतरा। उतरने के बाद मैं कुछ दिया और चेंज लेने के लिए निकाला, उसके पॉकेट से बीड़ी का पैकेट निकाला। मैंने कहा कि आप बीड़ी पी रहे हो और मुंह में तंबाकू है, पान है, और फिर भी बोलते आप ब्राह्मण हो। महाराज क्या कहे, कलयुग है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कलयुग की वजह से ये सब चीजें, लेकिन आप कर क्या रहे हो, ऑटो चला रहे और बोलते ब्राह्मण है। अभी क्या है, पेट तो पेट का तो पूजा करना पड़ेगा ना। तब मैंने उनको कहा आपको अगर पेट का पूजा करना है, लेकिन कौन से शास्त्र में लिखा है कि जो पेट का पूजा करता है वो ब्राह्मण है, जो भगवान का पूजा करता है वो ब्राह्मण है ना। तो महाराज सही बात है आपका। तो कम से कम मैं तब कहा कम से कम आपके अंदर इतना तो ब्राह्मणत्व है, ये बात को स्वीकार करने का इतना हिम्मत तो है कम से कम। तो ये बात विचार करना चाहिए, जन्म का चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण है, गुण जन्म विभाग नहीं है, जन्म गुण विभाग नहीं है, गुण कर्म विभाग, जन्म का बात आया नहीं है। खैर जन्म भी कुछ हद तक माना जा सकता है, जैसे कोई मान लीजिए डॉक्टर के परिवार में जन्म लिया है, ये संभावना ये है कि वो बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, या बनने का उसका ज्यादा चांस है अगर उसको उपयोग करेगा तो। उसी प्रकार जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं वो एक मौका है ब्राह्मण बनने का, ब्राह्मण नहीं है वो। अगर वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो उनको क्या करना चाहिए, तो उनको अनासक्त होना चाहिए, सब गुणों को संपन्न प्राप्त करना चाहिए, धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, गुणों को अर्जन करने का, गुणों की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए, धनार्जन करने के जो विचार है उनको त्याग करना चाहिए, अपने आप भगवान हमको संभालेंगे। जैसे पुराने जमाने में जो ब्राह्मण जो हैं हमेशा वो गरीब रहा करते थे, ये जो गरीबी है वो ब्राह्मणों के लिए विशेष शोभा है, जिस ब्राह्मण के पास ज्यादा संपत्ति है वो ब्राह्मण कभी भी उनके कोई शोभा नहीं देता उनको। अगर अमीर ब्राह्मण है या तपस्या नहीं कर रहा है, उनके ब्राह्मणत्व की सारी शक्ति चली जाती है। जो दारिद्रता जो है वो ब्राह्मण का ईश्वर है, तपस्या जो है ब्राह्मण का शक्ति है। क्षत्रिय को वीरता दिखाना चाहिए और उनके पास ये जो ऐश्वर्य होना चाहिए ये क्षत्रिय को शोभा देता है। तो कभी कभी कुछ तो बोलते हैं प्रभु जी आप थोड़ा अच्छा सा कपड़ा पहनो, अच्छा सा करो, अच्छा सा रहो, लेकिन ये जो ब्राह्मणों के लिए वो शोभा नहीं देता। ब्राह्मण कितने पुराने वस्त्र पहनता है, कितना सरल जीवन यापन करता है, कितना बहुत अपने लिए पैसा कम, बहुत कम पैसा रखता है, कम वस्तुओं को रखता है, उससे उनका ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि आप जितने भौतिक चीजों को इकट्ठा करोगे आपका मन जो है उन चीजों को संभालने में जाएगा, तब आपका मन शास्त्र में नहीं लगता है। इसलिए ब्राह्मणों को खास करके ध्यान देना चाहिए गुणों को विकास करने की। लेकिन इधर हम देखते हैं यही ब्राह्मणों ब्राह्मण देवस्य, भगवान रामचंद्र ब्राह्मण देवस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण मेरे भक्त हैं और मेरा वैभव को प्रचार करने वाले हैं, इसलिए भगवान जो है ब्राह्मण देवस्य। तेतु ब्राह्मण देवस्य तो क्या क्या हो, वात्सल्यम वीक्ष्य संस्तुतम, वात्सल्यम वीक्ष्य संस्तुतम, वात्सल्यम वीक्ष्य ब्राह्मणों ने देखा क्या देखा? भगवान रामचंद्र में वात्सल्य को देखा। ब्राह्मण ने सोचा, देखो भगवान रामचंद्र कितना हमसे प्रेम करते, कितना विश्वास करते हैं, तो सारा राज्य हमको उन्होंने ऐसे ही प्रदान कर दिया, ऐसे ही दे दिया। आजकल लोगों को कुछ 100 रुपए भगवान को देने में, दान देने में दस बार सोचते हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र ने क्या किया? सब कुछ बिना सोचे, सब अपना आभूषण सब दे दिया उन्होंने। तो ये वात्सल्य होगा तभी हो सकता है। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये वात्सल्य कितना है, वो किसके ऊपर आधारित है? हम जितना उनका सेवा करते हैं उसके ऊपर आधारित है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो अपने आप को कृष्ण के बड़े भक्त मानते हैं और बोलते हैं भक्ति तो हृदय की बात है प्रभु जी, हम हृदय में भगवान से प्रेम करते हैं। और उनको बोलेंगे मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, आप जरा कुछ सहयोग दीजिए। अभी क्या करें महाराज, ये तो अभी आजकल समय बर्बाद खराब है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, धंधा मंदा है, अनेकों अनेकों बहाना बनाएंगे। लेकिन अगर खुद की बेटी का शादी जो है उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे, अपना घर का इंटीरियर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन भगवान की मंदिर के लिए वो चलता है, थोड़ा सा ले लीजिएगा, वो हो जाता है, उसमें हो जाएगा। तो ये जो विचार है हम देखते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति जो है हृदय की बात है। अगर भक्ति हृदय की बात है, प्रेम हृदय की बात है, तो जब आपका जो बच्चा आता है माँ के पास, मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है, तो मम्मी बोलती बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये प्रेम तो हृदय की बात है। लेकिन वो बच्चे को भूख लगा गया, अभी उसको बना के खिलाना कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि प्रेम है हृदय में है वो बच्चा भूखा ही रहेगा। अगर हृदय में प्रेम है तो वो प्रेम को सेवा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अगर सच में लोगों को कृष्ण प्रति प्रेम है, वो क्या करेंगे? भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को सब कुछ समर्पित करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे मुझे इतना चाहिए, इतना दूंगा, इतना कब दूंगा, पूरा कैलकुलेशन नहीं करते। वो बहुत सरल विचार से चलो ले लो, दान ले लो, क्योंकि वात्सल्य है। कभी भी माता पिता जो बच्चों से प्रेम करते हैं, वो भले ही अपने लिए कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को देखभाल करने में कभी कंजूसी नहीं करेंगे। बच्चों को देखभाल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वात्सल्य है। तो ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान रामचंद्र जो है उनके प्रति बहुत वात्सल्य है, ब्राह्मणों के प्रति बहुत वात्सल्य है। तो ये वात्सल्य होने के कारण उन्हें सब कुछ दिया। तो ये वात्सल्य को देख के, क्योंकि भगवान रामचंद्र पिता के समान थे, राजा जो है उनको पिता के जैसा होना चाहिए, राजा को कभी राजा जैसा नहीं होना चाहिए, राजा को पिता जैसा होना चाहिए और पिता को राजा जैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा जो है शासन करता है। लेकिन आजकल कलयुग में उल्टा है, राजा राजा जैसा रहता है, पिता जो है राजा जैसा, पिता जो है पिता जैसा हो जाता है। पिता जैसा होना मतलब क्या है? वो बेटा बेटा से प्रेम करते रहना नहीं, पिता को जो है वो पुत्र के ऊपर शासन करना चाहिए, अगर कोई गलत करता है उसको बोलना चाहिए। लेकिन आजकल पिता सोचते हैं बेटा बचपन है ना, चलता है, मैं अभी बेटा टीवी देखा, ये तो उम्र है उसको करने की। वैसे धीरे धीरे से वो बच्चा जब बड़ा होता है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमता रहता है बच्चे, तो माता पिता बोलते इतनी तो उम्र है अभी करने दो। अभी जैसे थोड़ा बड़े होने के बाद उसको लात मार के भगा देते दूसरे घर में, तब वो बोलेंगे, रोते रोना शुरू करेंगे, अरे ऐसा ऐसा कर दिया मेरा बेटा ने, मैंने क्या किया सब कुछ। बचपन में तुमने शासन नहीं किया उसके ऊपर, बचपन में तुमने क्या किया उसके ऊपर? आसक्ति दिखाया, पुत्र आसक्ति, पुत्री के प्रति आसक्ति दिखाया, उनको शिष्टाचार में नहीं लाया, तो उसके वजह से अभी भुगतो। लेकिन राजा कैसे होना चाहिए? पिता के समान होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है उसको माफ करना, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि भगवान रामचंद्र एक पक्के राजा के रूप में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास राजा के रूप में सारे कार्य कर रहे हैं, जिससे सारे ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं? वीक्षा वात्सल्यम, ये वात्सल्य को देख के वो क्या करने लगे? प्रीता खिन्न दिया तस्मै तस्मै संस्तुतम, संस्तुति करने लगे, भगवान रामचंद्र की स्तुति करने लगे, या स्तुति करने की प्रेरणा है उनके अंदर। निश्चित रूप में आप अगर एक व्यक्ति को देखते हो जिनके अंदर अद्भुत गुण है, महान गुण है, उनको देख के उनको स्तुति करने का मन तो निश्चित रूप में आपको करता ही है। वात्सल्यम वीक्ष्य संस्तुतम प्रीताः क्लिन्न दियाः। प्रीताः, प्रीता का अर्थ है कि बड़े प्रसन्न होके अक्लिन्न दिया, उनका हृदय पिघल गया था, ब्राह्मणों का हृदय। ब्राह्मणों का हृदय ये भगवान रामचंद्र की गुणों को देख के ब्राह्मण का हृदय पिघल गया। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम कोई महान व्यक्ति को देखते हैं, गुणों के द्वारा लोगों का हृदय पिघल सकते हैं। हमारी बहिरंगी का ऐश्वर्य के द्वारा या हमारी पराक्रम के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा लोगों का हृदय पिघल नहीं सकते हो। हमारी त्याग जो है, हमारे अंदर वैराग्य जो है, उन सब गुणों के द्वारा हम लोगों का हृदय को जीत सकते हैं। तो ब्राह्मण लोग का हृदय पिघल गया। तस्मै, क्या किया सारे ब्राह्मणों ने, ये सब जितने भगवान रामचंद्र ने दिया था वो सब कुछ वापस रामचंद्र को दे दिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ब्राह्मण लोगों ने विचार किया, ये सब संपत्ति लेके हम करेंगे क्या, चलो वापस दे देंगे। तो इसके द्वारा, ये कार्य के द्वारा, कहीं और जगह वर्णन किया गया है कि भगवान रामचंद्र ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोई भी कमाई होता है अस्तित्व में पाप का ही होता है। पाप किए बिना कोई भी कमाई हो ही नहीं सकता इस जगत में। कुछ भी कमाना है तो पाप करके ही कमाना होता है, तो कमाई पाप से युक्त है। तो उससे कैसे बचे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको दान देना होगा, भगवान को अर्पण करना होगा, ब्राह्मणों को दान देना होगा। ब्राह्म दान देके उसको प्रत्यर्पितम, जब ब्राह्मणों ने वापस अर्पण किया, यानी जो दान देके, जैसे भगवान को हमने भोग लगाया, भोग लगा के वापस उसको ग्रहण करेंगे प्रसाद के रूप में, जो पाप है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे भगवताएं भगवान कहते हैं कि जो भी आप मुझे अर्पण करोगे मैं क्या करता हूँ, वो उसको शुद्ध कर देता हूँ। अगर भोग लगाए बिना अगर उसको खाओगे तो क्या होगा, वो पाप यो भूमते ते नहीं वसा, तुम केवल चोर हो, ये केवल पाप को ही आप ग्रहण कर रहे हो। मुच्छन्ते सर्व फिल विषय ये पचन्ते आत्मकारणात्, आत्मकारण अपने लिए जो ग्रहण करता है वो निश्चित रूप में वो पाप खा रहा है। तो कोई वस्तु को दान देके अगर जो उचित चीज जो हमको इससे प्राप्त होता है उससे लेने से हमको वो वस्तु के अंदर जो पाप है वो निकल जाता है। इससे भगवान रामचंद्र को सारे ब्राह्मणों ने वापस दे दिया, इसके द्वारा भगवान रामचंद्र ने सोचा कि पूरा जितने भी पृथ्वी है राज्य है वो शुद्ध हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों ने भवारिषे भगवान रामचंद्र का स्तुति करने लगे। तो ये श्लोक में मूलतः ब्राह्मणों के गुणों को वर्णन किया गया है, उनका कर्तव्य क्या है, उनको कितना विरक्त होना चाहिए, किस प्रकार उनका विचारधारा होना चाहिए, उन सबका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कलयुग में ब्राह्मण होने के लिए क्या करना पड़ेगा। कलयुग में ब्राह्मण होने के लिए पंचरात्रिक दीक्षा को ग्रहण करना होगा। वैदिक सभ्यता के अनुसार जन्मतः कुछ संस्कार प्राप्त, जन्म के बाद पिता के द्वारा संस्कार प्राप्त होता है तो तब उसको ब्राह्मण माना जाता है। लेकिन कलयुग में ये वैदिक जो चीजें हैं वो उसका बल नहीं रहता है, इसलिए पंचरात्रिक विधि का स्थापना की आचार्यों ने। ये पंचरात्रिक विधि इतना प्रबल है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी वर्ण में जन्म लिया हो, चाहे वो कोई भी राष्ट्र में प्रांत में जन्म लिया हो, ये पंचरात्रिक विधि में डालने से, ये पंचरात्रिक विधि को पालन करते करते पंचरात्रि गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त होता है तब वो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। जैसे हमारी संस्था में ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेने पर भी हम उनको पंचरात्रिक विधि के द्वारा पर प्रशिक्षण देखे, ब्राह्मण का प्रशिक्षण देखे, हम उनको दीक्षा दिलाते हैं और उनको भगवान की सेवा करने का अधिकार देते हैं। जैसे हमारे मंदिर में भी जो सेवा चल रही है उनमें जो पुजारी हैं अधिकांश ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिए, क्योंकि वो सुबह रोज जल्दी उठते हैं और मांस इत्यादि नहीं खाते, चार नियमों को पालन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और अनेकों समय तक इसको निरीक्षण दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया है, वो ट्रेनिंग के बाद उनको दीक्षा दिया गया है। तो ये पंचरात्रि गुरु के द्वारा, ये प्रोसेस के द्वारा जो दीक्षा मिलता है, वो दीक्षा के द्वारा वो ब्राह्मण बन सकता है। दिव्यम ज्ञानम ददाति, दिव्यम ज्ञानम, जैसे एक उदाहरण दिया गया उपगोस्वामी पर वक्र साम सिंधु में, जैसे एक बेल मेटल, एक पीतल है या कुछ ऐसे बना हुआ एक मेटल है, एक लोहा जैसा कोई ये है, मेटल है, उसको अगर एक, एक मणि के द्वारा स्पर्श किया जाए तो वो सोना बन जाता है। उसी प्रकार एक शुद्ध वैष्णव आचार्य, उनके संबंध में, उनके संपर्क में शिक्षा ग्रहण करके, दीक्षा ग्रहण करने से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। तो एक बार एक व्यक्ति विदेश में प्रभुपाद जी के पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं आपको ब्राह्मण बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा उसके लिए कुछ नियम पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि क्या नियम पालन करना है? सबसे पहला आपको मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं करना है। और जैसे ये बातों को सुना तो उन्होंने कहा ये मेरे संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। जैसे आपको डॉक्टर बनना है उसका एक विधि है कि नहीं, तो वैसे ब्राह्मण बनने के लिए भी एक विधि है, एक प्रोसेस है। तो जब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। जितना कड़ाई से आप पालन करोगे तब वो विधि पालन करोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा ब्राह्मण बन सकते हो। अच्छा प्रश्न है आपका। भले ही पंचरात्रि विधि के द्वारा एक को ब्राह्मण बनाया जा सकता है, लेकिन ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण साधारण कर्मकांडी ब्राह्मण जैसा ब्राह्मण की स्तर नहीं है। वो भगवान के शरणागत भक्त है। तो भगवान की शरणागत भक्त होने के नाते वो अगर उनको वॉचमैन का सेवा भी देंगे तो वो क्या करेगा? भगवान की सेवा समझ के वो कार्य भी करेगा। तो ब्राह्मण भी हैं और साथ साथ में क्या कर रहा है? भगवान की सेवा के रूप में वॉचमैन का कार्य भी वो कर रहा है। तो उनको ये वर्णाश्रम धर्म से वो परे हो गया। वर्णाश्रम धर्म जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उससे परे है वैष्णव का स्तर। जब वो वैष्णव बन जाता है तो उनको आप पूजा करने के लिए बताओ, या प्रवचन करने के लिए बताओ, या बाथरूम साफ करने के लिए बताओ, या ऑटो चलाने के लिए बताओ, उनके लिए इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर सेवा के पीछे वो भगवान को ही देखता है। तो इसलिए हमारा परम कर्तव्य ब्राह्मण बनना नहीं है, हमारा परम कर्तव्य है वैष्णव बनना। वैष्णव जो है ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थिति है। हो सकता है कि ब्राह्मण वैष्णव ना हो, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण है। जैसे ब्राह्मणों के तीन स्तर माने जाते हैं। पहला है विजा, यानी जिनको दीक्षा मिला है वेदों को पढ़ने की। दूसरा स्तर है विप्र, अभी उनको वेदों को पढ़ाने का उनके पास वो योग्यता है, इसको विप्र कहा जाता है। और तीसरा है वैष्णव, जो वैदिक ज्ञान को पूर्ण तरीके से साक्षात्कार कर चुका है कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो वो वैष्णव है। तो वैष्णव जो है ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में जो पूरा विश्लेषण है, विचार है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने ग्रंथ में पेश करते हैं। जिसका नाम है ब्राह्मणस एंड वैष्णवस, उन्होंने आख्यान दिया था, व्याख्या दिया था, जिसके अंदर ब्राह्मण कौन होते हैं और किस प्रकार ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्तर वैष्णव है, उसका पूरा उन्होंने वर्णन किया है। और कोई प्रश्न है? हम लोग जो शिखा रखते हैं उसका क्या महत्व है? शिखा के अनेकों अनेकों महत्व है, लेकिन सिद्धांतिक महत्व इस बात को हम कहना चाहते हैं। सिद्धांतिक महत्व यह है कि जो हमारे जो केश होते हैं, केश है वो बाल हैं, वो भौतिक इच्छा को सूचित किया जाता है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर देते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, सारे बाल को पूरा मुंडन कर लेना चाहिए। लेकिन भक्त वो है जो भक्ति करता है, भक्ति का परिभाषा वो स्वयं पर देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य आशाओं को त्याग करना। इसका अर्थ क्या है? कुछ आशाओं को रखना, कुछ इच्छाओं को रखना। क्या है वो इच्छा को जिनको रखना चाहिए? जो कृष्ण के संबंधित हो इन इच्छाओं को रख सकते हैं। तो शिखा का अर्थ ये है, मैं सारे इच्छाओं को मैं त्याग कर दिया है, कुछ ही इच्छाओं को रखा है, इसको गांठ मारते हैं जो कृष्ण के संबंधित है, ये शिखा है। लेकिन जब मैंने इस प्रकार का व्याख्या दिया था, एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी हम गृहस्थ भक्त है, हमारा शिखा थोड़ा लंबा रहता है, बाकी सब बाल भी रहता है लेकिन छोटा छोटा रहता है। मैंने कहा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पढ़ के नहीं, आई डू फॉर दैट। लेकिन सिद्धांत बात यह है कि जो भौतिकवादी रहता है वो सबसे ध्यान उनके बालों के ऊपर रहता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमको खबर मिला, बातचीत कर रहे थे, सबसे ज्यादा खर्चा आजकल जो लोग किसके ऊपर करते, बाल को सजाने में करते हैं, और थोड़ा सा वो सफेद होता है तो उसको देखभाल करने में पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन क्यों? वो चाहते हैं मैं बहुत ही इच्छा बना के रखू, आई वॉन्ट टू हैव मटीरियल डिजायर। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं? बहुत ही इच्छाओं को त्याग करते हैं और कुछ इच्छाओं को रखते हैं जो किसके संबंधित है। जैसे सबको इच्छा है इधर मंदिर बनाने की, ये भी इच्छा है कि नहीं, हाँ, भगवान को अच्छा भोग लगाने की इच्छा है, ये भी इच्छा है, तो उन इच्छाओं को रखते हैं। लेकिन खुद के लिए मैं गाड़ी खरीदूंगा, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पीने के लिए चाहिए, हाँ मुझे वो करना है, हाँ मुझे ऐसा घर खरीदना है, ये इच्छाओं को त्याग कर देते हैं। और कोई प्रश्न है? तंत्राश्रीमद्भागवतम की श्रीतौपाद की।